जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारे, जमुना तीरावन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारे, जमुना तीरावन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदी समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की जय श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न वर्तितव्यं तद् अधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर् यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः। न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर् यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः। न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर् यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञाः न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर् यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञाः Matajis. नहीं वर्तितव्यम रहते रहने के योग्य तत् अतएव अधर्म अधर्म बंधो मित्र धर्मेण धर्म से सत्येन सत्य से च भी वर्तितव्ये स्थित होकर ब्रह्म आवर्ते वस्थान जहां यज्ञ संपन्न हो यत्र जहां यजन्ति ठीक से करते हैं यज्ञे यज्ञ या भक्ति से यज्ञ ईश्वरम भगवान को यज्ञ यज्ञ वितान फैलते हुए विज्ञाह पटु लोग अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अतएव हे अधर्म के मित्र तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। तात्पर्य, यज्ञेश्वर या भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता हैं। ऐसे अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करना और फलस्वरूप ऐसे कर्म करना जिनसे भगवान सभी प्रकार से तुष्ट हों। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहां भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न हो वो ब्रह्मावर्त कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश हैं और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य भागवत में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान मूल मंत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधुर जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 33 से चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। महाराज परीक्षित, जो कि पांडवों के वंशज और भगवान श्री कृष्ण का निज दर्शन अपनी माता के गर्भ में उन्हें हुआ, स्वाभाविक रूप से हम जान सकते हैं कि महाराज परीक्षित के अंदर सारे वैदिक संस्कार समाये हुए थे। और इसलिए जैसे ही महाराज परीक्षित ने अपने ही राज्य में मूर्तिमान कली को देखा कि मूर्तिमान कली वो एक असहाय गाय और बैल के ऊपर प्रहार कर रहा है एक शूद्र के रूप में, तो तुरंत महाराज परीक्षित ने इसका प्रतिकार किया। और इससे महाराज परीक्षित ये दिखा रहे थे कि जो राजा है, राजा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। जो नेता होता है उसका उत्तरदायित्व है कि जहां कहीं पर भी वो अधर्म को देखे तो उसका प्रतिकार वो करे। खैर, आजकल तो जो राजा हैं, नेता हैं, प्रतिकार करना तो दूर की बात है, स्वयं वो अधर्म में लगे हुए और उनके अधर्म का प्रतिकार जनसाधारण करती है। इस प्रकार की उल्टी गंगा बह रही है आजकल कलयुग में, और इसी कलयुग को दंडित करने के लिए महाराज परीक्षित ने अपने शस्त्र उठाए। इसलिए पिछले युगों में क्षत्रिय वो अपने शस्त्र उठाते थे, ऐसा नहीं कि मन में आया तो किसी के ऊपर अपना शस्त्र चला दिया या बहुत समय हुआ शस्त्र किसी के ऊपर चलाया नहीं है या शस्त्र है तो चलाओ किसी के ऊपर। शस्त्र चलता था शास्त्र के आधार पर, तो शास्त्र का ज्ञान पहले हर क्षत्रिय को होता और शास्त्र के ज्ञान के आधार पर क्षत्रिय का शस्त्र चलता। इसलिए जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के पहले जब वो अपने ही सगे संबंधियों को देख रहे थे तो उनसे शस्त्र नहीं उठ रहा था, क्योंकि अर्जुन का जो सीमित शास्त्र का ज्ञान था उस सीमित नैतिक शास्त्र के ज्ञान के आधार पर अर्जुन इस निर्णय पर आ गए थे कि मुझे शस्त्र नहीं चलाना चाहिए इनके ऊपर। तो यहां पर भी अर्जुन का गुण बताया गया है कि अर्जुन ऐसा नहीं कि वो पूर्ण प्रकार से देहात्म बुद्धि में और अपने सगे संबंधी के साथ अपना रिश्ता देखते हुए अपना शस्त्र गांडीव नहीं उठा रहे थे। पहले अध्याय में यदि आप पढ़ोगे भगवद गीता के, तो जो तर्क वितर्क अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वो सब शास्त्र पर आधारित है। वो भौतिक रिश्ते नातों पर आधारित नहीं है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि यदि मैं इन सब क्षत्रियों को जो मेरे सामने खड़े हैं यदि मैं इनको मार दूंगा तो इनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, और वो जो विधवा पत्नियां हैं गलत पुरुष काम वासना के वशीभूत उन पत्नियों को इन क्षत्रियों के पत्नियों को दूषित करेंगे, जिनके वजह से वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और वर्ण संकर के वजह से सारा समाज फिर दूषित हो जाएगा। तो शास्त्र पर आधारित है ये कि स्त्रियों की रक्षा कैसे होनी चाहिए। तो हालांकि उस रणभूमि में कोई स्त्री नहीं थी, परंतु अर्जुन इस रणभूमि के पश्चात समाज में क्या होगा इसे देख रहे थे शास्त्र के आधार पर। तो जब किसी व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान होता है तो वो व्यक्ति केवल जो तात्कालिक स्थिति है उसे नहीं देखता। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में है वो केवल तात्कालिक स्थिति को देखता है, इमीडिएट सिचुएशन जिसे कहते हैं। इसलिए जो जानवर होते हैं, जानवरों में और एक इंद्रिय भोगी में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे छोटे बच्चे, ये बताया गया है कि छोटे बच्चे, जानवर और एक इंद्रिय भोगी, इनमें समानता क्या है कि तात्कालिक स्थिति से प्रभावित हो जाते हैं। एक छोटा सा बालक जब किसी खिलौने को देखता है तो तुरंत उस खिलौने को पाना चाहता है। ये नहीं कि वो दुकान में है, वो मेरा नहीं है और पैसे नहीं दिए हैं उसके, नहीं, वो उसके परे नहीं देखता, तुरंत उसे चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक बार वो अपना बचपन याद कर रहे थे तो बता रहे थे कि बचपन में वो एक ही खिलौना लिए थे, जिद किए थे लेने के लिए, और बाजार में अपने माता पिता के साथ वो गए तो बंदूक उन्होंने देखी दुकान में, तो उन्हें बंदूक चाहिए थी। तो उनके पिताजी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, माताजी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जो कुछ प्रभुपाद मांगते तो पिताजी दे दिया करते थे। तो एक बंदूक लाकर दे दी जो मांग रहे थे। तब फिर अभय छोटे से उन्होंने कहा कि एक और चाहिए, तो अब माताजी बीच में आई, एक और क्यों चाहिए, एक मिल गया अभी। तब देखिए उस समय भी प्रभुपाद जी की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण थी कि उन्होंने कहा कि मेरे दो हाथ हैं, तो एक बंदूक एक हाथ के लिए, दूसरी बंदूक दूसरे हाथ के। अब क्या कोई कहे इसके ऊपर, इस तर्क के ऊपर। तो जब पूछा गया कि क्यों चाहिए तो कारण भी दिया, और वो भी ऐसा कारण कि हालांकि बच्चों के जो कारण होते हैं उसके ऊपर आप वाद विवाद नहीं कर सकते, कि बच्चे जब पूछ लेते हैं कि ये खिलौने क्यों नहीं लेने चाहिए, यदि बच्चों को जब माता पिता मना करते हैं कि खिलौने नहीं लाएंगे तो पूछ लेते क्यों, और मुझे तो पता नहीं आप लोग क्या उत्तर देते हो कि पढ़ाई करो, तो हो सकता है बच्चे ये भी पूछ ले क्यों। तो माता पिता फिर क्या उत्तर देंगे, पढ़ाई क्यों करो, क्योंकि पढ़ लिख कर फिर तुम पैसा कमा सकोगे, क्यों। पैसा क्यों कमाना है, पैसा इसलिए कमाना है कि फिर तुम सुखी रहोगे, क्यों। तो एक दृष्टिकोण से ये सारे जो क्यों के प्रश्न हैं, ये बड़ों को भी पूछ लेना चाहिए खुद से कि मैं क्यों ये सब कुछ कर रहा हूं।
तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो तात्कालिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हुई, रोना शुरू, और तुरंत कोई कुछ आवाज निकाल दिया तो हंसना शुरू। और जानवर भी इसी प्रकार के होते हैं। जानवरों में बहुत विकसित बुद्धि नहीं होती, तात्कालिक स्थिति। कुत्ते के सामने आप रोटी फेंको, वो दुम हिलाते हुए कुत्ता आएगा और दूसरे हाथ से उसी कुत्ते को उसी समय डंडे से मारो, वो चिल्लाते हुए भागेगा। और फिर वही हाथ से जिससे डंडा से मारा है वही हाथ से फिर से रोटी से बुलाओ, फिर से भाग कर आएगा, क्योंकि वो तात्कालिक स्थिति से परे नहीं देखता कुत्ता कि इसी व्यक्ति ने मुझे डंडा मारा और अब रोटी दे रहा है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं क्या करता ये। क्योंकि कुत्ता केवल डंडा देखता है, रोटी देखता है, बस इतना ही, उसकी दृष्टि केवल उसी तक सीमित है। परंतु अब जैसे छोटे बच्चे, उन्हीं का उदाहरण फिर से हम लें, तो छोटे बच्चे किसी से प्रेम क्यों करना शुरू करते हैं? क्योंकि ज्यादा उसके साथ रहते हैं। आजकल देखा जाता है कि बड़े बड़े घरों में माता पिता ज्यादा बच्चों के साथ समय नहीं बिताते, वो घर की आया नौकरानी, तो ज्यादा वो आया और नौकरानी के साथ प्रेम करते हैं। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे पाश्चात्य देश की संस्कृति के विषय में, द संडे डैडी, संडे डैडी प्रभुपाद कहा करते थे। संडे डैडी का अर्थ है कि डैडी केवल संडे को दिखते थे पुत्र को। तो यहां तक स्थिति हो गई, प्रभुपाद ने कहा कि पुत्र ने अपनी माता से पूछा, डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट ले रहे थे संडे के दिन सारा परिवार बैठकर, तो पुत्र माता से पूछता है, ये पुरुष कौन है? तो माता जी कहती, ये तुम्हारा बाप है, तुम्हें पैदा किया इसी ने। तो प्रभुपाद कहा करते थे, दिस इज कॉल्ड संडे डैडी, केवल संडे को वो दिखते हैं, इसलिए पुत्र को पता है कि हां डैडी हैं, लेकिन केवल संडे के दिन। तो छोटा बच्चा जब जिसके संपर्क में ज्यादा रहता है उससे प्रेम करना शुरू करता है, वैसे ही कोई जानवर भी जिसके संपर्क में ज्यादा रहता है वो उससे प्रेम करना शुरू करता है। और वैसे ही एक वयस्क व्यक्ति भी हो, परंतु यदि वो इंद्रिय भोग की चेतना में रहता है तो जिस इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में वो रहता है उससे वो प्रेम करना शुरू करता है। परंतु अर्जुन वो अपना प्रेम और जो भी अन्य भावनाएं उनके हृदय की वो शास्त्र पर आधारित रख कर फिर करते हैं। इसलिए हमारी साधना भक्ति में हमें परीक्षित महाराज और अर्जुन से क्या सीखना चाहिए कि हम इस भौतिक संसार को तात्कालिक स्थिति के दायरे में न देखें। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए इसकी परिभाषा दी। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि एक भक्त जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से ये पूरे संसार को देखता है। तो जब तक हम इस पूरे संसार को भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तब तक हम प्रगति नहीं कर रहे भक्ति। और भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण क्या है इस भौतिक संसार का? दुखालयम अशाश्वतम। तो जब तक हमारे अंदर वो दृष्टिकोण नहीं आता, तब तक हम इस भौतिक संसार को बिल्कुल गलत तरीके से देख रहे हैं। अब कई बार ये भी हम कह सकते हैं कि भगवान ने कह दिया है कि ये दुख का आलय है और अशाश्वत है, परंतु मेरा जो अनुभव है इस भौतिक संसार का, उसमें तो मुझे इतना दुख तो नहीं दिखता। तो कई बार ये द्वंद्व हमारे मन में रहता है कि क्या वास्तविक रूप में दुखालय है। बहुत बार साधना भक्ति में हम कई वर्ष जब साधना भक्ति हमारी कर लेते हैं, तो जो बहुत स्थूल दुख हैं इस संसार के, उनसे हम थोड़ा दूर आ जाते हैं, ग्रॉस मिजरीज जिसे कहते हैं, कि इतने ज्यादा जो बाहर जो लोग तकलीफ में हैं, इतनी तकलीफ में, क्योंकि रहन सहन खान पीन ये सब थोड़ा हमारा स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, और इन सब के कारणों के वजह से इतने दुख बड़ी बड़ी मात्रा में नहीं मिलते। तो धीरे धीरे होता क्या है कि दुख इतनी मात्रा में नहीं आ रहे, परंतु आध्यात्मिक सुख भी उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा, तो हम कहीं बीच में अटके रहते हैं। तो वो जो बीच की स्थिति है, उसमें ये भौतिक संसार इतना दुखमय नहीं लगता। तो कई बार फिर ऐसी स्थिति में हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, क्या वास्तविक रूप में ये संसार इतना दुखी है? मुझे तो इतना तो नहीं लगता, कुछ तो सुख है शायद कम से कम। और फिर हम इस भौतिक संसार के प्रति आशा बांधने लगते हैं। जैसे ही इस भौतिक संसार के प्रति हम आशा बांधने लगते हैं, वैसे ही जो अध्यात्म के प्रति हमारी पकड़ है वो ढीली होने लगती है। और फिर ऐसी स्थिति में हम आते हैं जब जप में, कीर्तन में, श्रवण में, भगवान की आराधना में वो रस अब नहीं बना रहा। जो पहले बना हुआ रस था वो अब रस नहीं बना हुआ, केवल मैकेनिकल, केवल एक औपचारिकता के रूप पे करने के लिए कर रहे हैं साधना भक्ति, परंतु उसमें रस नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, और श्रील प्रभुपाद ने सबकी आंखों में देखते हुए एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा। प्रभुपाद ने पूछा कि क्या तुम लोग विश्वास, पूर्ण विश्वास है तुम्हारे अंदर कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? और जब श्रील प्रभुपाद आंखों में देखते हुए ये ऐसा प्रश्न पूछते, तो सारे शिष्य सोचने लगे कि क्या हम ईमानदारी से इसका उत्तर दे पाएंगे कि नहीं। तो कई बार हमें अकेले में अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मुझे हरे कृष्ण महामंत्र पर पूर्ण विश्वास है कि नहीं, क्या मुझे भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है कि नहीं। हम बहुत आसानी से दूसरों को सर्वधर्मान परित्यज श्लोक बोल देते हैं, परंतु यदि भगवान हमारे सामने खड़े होकर हमसे पूछें, क्या तुम अपना सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आने के लिए तैयार हो, यदि इस समय, आज के दिन, इस क्षण हमें भगवान श्री कृष्ण ये पूछें, तो क्या हम तैयार हैं उसके लिए। इसलिए हमारा जो शास्त्र का ज्ञान है, जैसे अर्जुन भी शास्त्र पर ही आधारित अपने तर्क वितर्क दे रहे थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वो सारे शास्त्र पर आधारित तर्क वितर्क अर्जुन के विफल किए और कहा कि ये जो तुम कह रहे हो ना, ये सब तुम्हारे तर्क और वितर्क, तुम्हारे नीति शास्त्र के कथन, सबसे बड़े मूर्ख हो अर्जुन तुम। सोचिए, जो शास्त्र का उच्चारण कर रहे हैं उसे वही भगवान जिनके मुख से सारे शास्त्र आए कह रहे हैं कि ये मूर्ख है, मूर्ख मूर्खता कर रहे हो। क्योंकि शास्त्र का ज्ञान भी अलग अलग समय के लिए अलग अलग तरीके से वो उपयोग में आता है। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया हुआ अन्न क्या ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है या नहीं, क्या कहोगे? खीर, भगवान को चढ़ाई हुई खीर, क्या भक्तों को इसे रोज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हां या ना? अब ये सिद्धांत शास्त्र पर आधारित है या नहीं? हां या ना? हां। और यदि मैं कहूं नहीं, तो आप कैसे अपना डिफेंस करोगे इसमें? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाई हुई खीर, ये एक भक्त को खाना चाहिए, ये शास्त्र पर आधारित वाक्य है, परंतु हर समय के लिए नहीं। एकादशी के दिन करना चाहिए, हां या ना? अब बोलिए। भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाई हुई खीर एकादशी के दिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? अभी आपने कहा कि हर रोज खानी चाहिए। तो यहां पर ये देखिए, एक वाक्य है और दोनों शास्त्र पर आधारित हैं। शास्त्र ही कहता है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, चाहे वो भगवान को ही चढ़ा हुआ हो, और वही शास्त्र कहता है कि यदि अन्न खाओ बिना भगवान को चढ़े हुए तो वो पाप है, और वही अन्न एकादशी के दिन खाए तो पाप। तो कैसे समझोगे? जैसे कि इस अध्याय का शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। वही कली को दंडित भी किया जा रहा है और पुरस्कृत भी किया जा रहा है। यही श्रीमद् भागवत में मैं आपसे पूछूं कि क्या कलयुग की भर्त्सना हुई है या प्रशंसा हुई है, क्या कहोगे आप? अब आप सोच विचार करके उत्तर देते हो। हां, दोनों, कलयुग की भर्त्सना भी हुई है, जैसे यहां पर दंडित किया जा रहा है कली को, और बहुत कुछ कहा गया है कलयुग के विषय में, और ऐसा नहीं एक ही श्लोक में कहा गया है, कलेर दोष निधे राजन। एक हम स्लोवेनिया में थे, स्लोवेनिया में एक ब्रह्मचारी है वहां पर, वासुदेव दत्त प्रभु भक्ति विकास महाराज के शिष्य हैं, तो बता रहे थे कि एक कलकत्ता में एक कार्यक्रम भक्ति विकास महाराज का आयोजित किया था इन्होंने, तो भक्ति विकास महाराज वो बहुत सी भाषाएं जानते हैं, वो हिंदी में भी प्रवचन दे सकते हैं, वो बंगाली में भी दे सकते हैं, है वो ब्रिटिशर। तो भक्ति विकास महाराज ने क्या किया कि इनके शिष्य ये वासुदेव दत्त प्रभु को कहा कि तुम प्रवचन दो, मैं अनुवाद करता हूं बंगला में। अपने ही गुरु महाराज के सामने इनको प्रवचन के लिए बिठा दिया और इनके गुरु इनके प्रवचन का अनुवाद कर रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति है, तो क्या प्रवचन होगा उसमें फिर। परंतु गुरु का आदेश है, तो आदेश को लेते हुए वो अपना प्रवचन शुरू किया और बहुत कुछ भूल रहे थे, जो याद आना चाहिए वो नहीं आ रहा था और जो नहीं याद आना चाहिए वो आ रहा था। तो प्रवचन में उन्होंने ये श्लोक कहा, कलेर दोष निधे राजन, और उसके आगे वो भूल गए। उन्होंने उसका अनुवाद भी किया, अनुवाद में उन्होंने अंग्रेजी में पहले उन्होंने कहा कि एक कलयुग एक दोषों की निधि है। तो भक्ति विकास महाराज उन्होंने कहा गलत। तो अब भक्ति विकास महाराज तो अब तक केवल ये जो कह रहे थे उसका अनुवाद कर रहे हैं, अब भक्ति विकास महाराज ने कहा ये जो कह रहा है गलत कह रहा है। तो अब ये डर गए कि मैंने तो भागवत का श्लोक कहा, वो उसमें गलत क्या है, और सारे जो ऑडियंस में बैठे हुए सब लोग थे, कई भक्त थे कई बाहर वाले थे, वो लोग अब बहुत से लोग जो सोए हुए थे जग गए। कि ये तो बहुत बार सुना है कलेर दोष निधे राजन, अब ये हरे कृष्णा वाले दूसरे कह रहे हैं गलत, तो यहां पर तो कुछ वाद विवाद होने वाला है, तो अच्छा मैच होगा, देखते हैं क्या है। तो भक्ति विकास महाराज ने कहा ये जो कहा गलत कहा, क्योंकि पूरा नहीं कहा, पूरा नहीं कहा इसलिए गलत उसका अर्थ आ जाता है। कि श्लोक में आगे कहा गया है अस्ति एक महान गुण, कि वो कलयुग जो कि एक सागर है दोषों का, उसमें एक महान गुण है, और ये एक बहुत महान वाक्य है इस श्लोक का जो ये नहीं कहा इसने, इसलिए गलत है। इसलिए देखो कि किसी भी वाक्य को यदि पूरा नहीं किया जाए तो उसका विपरीत अर्थ निकल सकता है। जैसे कि मान लो प्रवचन चल रहा है और प्रवचन में प्रवक्ता एक वाक्य कह देता है जो कोई व्यक्ति अभी अभी मंदिर में आया है और उसने केवल वो वाक्य एक सुना और उठ के चला गया, तो प्रवक्ता प्रवचन करते करते एक वाक्य कहा कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है इंद्रिय भोग, बस इतना वाक्य वो किसी व्यक्ति ने सुना, उसने कहा ये क्या हो गया हरे कृष्ण वालों को, ये प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, ये तो सबको बताना होगा जाकर कि आज आज तक लोग इतना मंदिर में नहीं आते थे क्योंकि ये लोग इंद्रिय भोग के विपरीत इतना भाषण देते, तो सबको जाके मैं इन्फॉर्म करूं कि बदल गए हैं लोग। तो केवल इतना वाक्य सुना किसी ने कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है इंद्रिय भोग, और वो बाहर चला गया, परंतु वाक्य पूरा नहीं हुआ था। हिरण्यकश्यपु ऐसा कहता था, तो ये सुना नहीं कि हिरण्यकश्यपु ऐसा कहता था, केवल इतना वाक्य सुना। तो उसने सही सुना या गलत सुना? उसके कानों ने सही सुना, परंतु उसके मन ने और उसकी बुद्धि ने उसका अर्थ गलत सुना। तो तात्कालिक स्थिति क्या होती है, जो हमारे कानों हमारे आंखों से हम संपर्क में जब किसी वस्तु या व्यक्ति स्थिति से आते हैं, परंतु शास्त्र हमें उसके परे ले जाते हैं कि इसके परे क्या है। तो इसलिए अर्जुन तात्कालिक स्थिति को देख रहे थे शास्त्र के आधार पर। देखिए स्थिति अर्जुन की, वो कोई इंद्रिय भोग या इंद्रिय भोगी की तरह उस तात्कालिक स्थिति को नहीं देख रहे थे, वो शास्त्र पर आधारित, और उसी शास्त्र का प्रतिकार भगवान ने किया जो कि रचयिता है उसी शास्त्र के। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों हैं? बहुत से कारण हैं इसके। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद वो वृंदावन में प्रातः सैर के लिए निकले थे अपने शिष्यों के साथ, तो श्रील प्रभुपाद चलते चलते रुके, और रुककर श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को पूछा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है। तो एक भक्त ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रभुपाद आप कहते हो। मैंने कहा नहीं, ये कुछ उत्तर नहीं हुआ, मैं तो कुछ भी कहूंगा। तो फिर एक भक्त ने कहा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में ऐसा कहा गया है। प्रभुपाद ने कहा, भगवद गीता? मैं नहीं जानता भगवद गीता को, भगवद गीता तो तुम्हारा ग्रंथ है, तुम हिंदुओं का ग्रंथ है, और इसलिए तुमने अपने ग्रंथ को प्रस्तुत कर कह दिया कि ये ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान है, मैं क्यों स्वीकार करूं तुम्हारा ग्रंथ। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ये प्रश्न पूछ रहे थे, तो कैसे सिद्ध करोगे? तो कोई उत्तर दे नहीं पाया। तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अनुभव किया जा सकता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनका अनुभव किया जा सकता है, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अब ऐसा उत्तर तो कभी सुना नहीं किसी ने। तो सभी ने कहा, जय प्रभुपाद, क्या उत्तर है। तो वो उस मॉर्निंग वॉक में भरद्वाज प्रभु वो थे। तो हुआ क्या कि वृंदावन के पश्चात फिर श्रील प्रभुपाद गए लॉस एंजलिस, और उसके कुछ दो हफ्ते बाद ये भरद्वाज प्रभु भी लॉस एंजलिस गए, और फिर वहां पर एक और मॉर्निंग वॉक में भरद्वाज प्रभु श्रील प्रभुपाद के साथ थे। तो श्रील प्रभुपाद ने उस मॉर्निंग वॉक में फिर से यही प्रश्न वहां के शिष्यों को पूछा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं। तो अब भरद्वाज प्रभु उत्तर जानते थे, क्योंकि वो वृंदावन में थे जब श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया। तो कहे कि बाकियों को बोलने दो, फिर मैं अपना जो श्रील प्रभुपाद जो उत्तर चाहते हैं वो मैं दूंगा। तो बाकी सब अलग अलग उत्तर दे रहे थे, फिर भरद्वाज प्रभु वो थोड़ा आगे आए और श्रील प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद मैं बताता हूं, क्योंकि हम अनुभव कर सकते हैं भगवान। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं। और प्रभुपाद ने कहा क्योंकि भगवत गीता में कहा है इसलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम। तो श्रील प्रभुपाद अपने इस प्रवचन में बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो हर युग में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भगवान जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की ग्लानि को दूर करने के लिए, अधर्म को दूर करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इसी गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, और इसी गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सब धर्मों को फेंको बाहर, त्याग दो। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति इसे कैसे समझ पाएगा कि वही भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं और वही भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति ही ये बोल सकता है और कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, कि क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना की है और उन्हीं से धर्म शास्त्र आ रहे हैं, तो वही कह सकते हैं कब उसे छोड़ना। यदि और कोई व्यक्ति जिसके अंदर ये योग्यता नहीं, क्षमता नहीं, वो ये नहीं स्थापन कर सकता और उसे नहीं विफल कर सकता, केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर सकते हैं, इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो शास्त्र इसे भी किस समय कैसे हमारे जीवन में उतारना चाहिए, इसे समझने के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है मैच्योरिटी, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अर्जुन शास्त्र बोल रहे हैं परंतु वो ठीक समय नहीं और ठीक शास्त्र को कोट नहीं कर रहे। जैसे कि हमने उदाहरण लिया कि चावल की बनी खीर, चावल की बनी खीर हर भक्त को खानी चाहिए परंतु एकादशी के दिन नहीं। एक भक्त को कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करने चाहिए जब वो गृहस्थ आश्रम में है तब। है ना? भगवान को भोग चढ़ना चाहिए जब उचित समय है तब। ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे भगवान को उठाकर भगवान को राजभोग अर्पित किया जा रहा है। अर्चना विधि के अनुसार भगवान को भोग चढ़ाना ये एक भक्ति साधना की विधि है, परंतु यदि उस समय करोगे तो अपराध है। तो इसलिए शास्त्र को किस समय, कैसे और कौन से शास्त्र के किस पैसेज को इस्तेमाल करना है, इसके लिए मैच्योरिटी होना चाहिए। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी संस्था में भक्ति करते हैं, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की जो संस्था है इसमें भक्ति करते हैं। तो संस्था के कुछ नियम होते हैं और साधना के नियम होते हैं। हमारी व्यक्तिगत साधना के नियम है और संस्था के नियम है। और यदि हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो हम कई बार संस्था के नियम साधना में लगाते हैं और साधना के नियम संस्था में डालते हैं। और जिसके वजह से कई बार हमारी साधना में तकलीफें आती हैं और फिर भक्तों के संग में तकलीफें होती हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद से मिलने एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से मिलने आए तो श्रील प्रभुपाद ब्रह्मानंद प्रभु उस समय श्रील प्रभुपाद के वो सेवक थे तो श्रील प्रभुपाद के कमरे में प्रसाद नहीं था उन अतिथि को देने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने सेवक से पूछा कि प्रसाद कहाँ है इनको देने के लिए, और उनको जाना था, निकल रहे थे वो। तो प्रभुपाद ने उनको रुकने के लिए कहा, परंतु वो कहे कि नहीं मुझे देर हो रही, जाना है मुझे। तो प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु से कहा कहीं से भी प्रसाद लेकर आओ। तो पूरे मंदिर में घूमे, कहीं पर उन्हें इनको देने लायक कुछ प्रसाद मिला नहीं। तो ब्रह्मानंद प्रभु फिर आए प्रभुपाद के पास कि कहीं पर कुछ प्रसाद नहीं। प्रभुपाद ने कहा ऑल्टर पर जाओ, और ऑल्टर पर भोग चढ़ रहा था तो सब पर्दे बंद थे और अंदर भोग चढ़ रहा था। तो ब्रह्मानंद प्रभु दरवाजा खोले, भोग चढ़ने के बीच में ऑल्टर से, भगवान के प्लेट से, और पुजारी चिल्लाने लगा, क्या कर रहे हो। प्लेट से उठाकर जाकर श्रील प्रभुपाद के रूम पर गए। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो निकल पड़े हैं आगे, रास्ते पर जाओ, रास्ते पर कहीं पर मिलेंगे। तो ब्रह्मानंद प्रभु भागते हुए उन व्यक्ति को रास्ते पर रुकाकर उन्हें वो प्रसाद दिया। और ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं कि जैसे ही उस व्यक्ति को प्रसाद दिया इन्होंने, और वो देख रहे थे कि व्यक्ति ने प्रसाद खाया कि नहीं, इनके सामने वो व्यक्ति अंतर्धान हो गया, डिसअपीयर। तो ब्रह्मानंद प्रभु आश्चर्यचकित हुए और आकर वो श्रील प्रभुपाद को बताने ही वाले थे कि क्या उनका अनुभव हुआ। श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु से कहा, डिड यू गेट प्रसाद? ब्रह्मानंद प्रभु ने कहा यस। प्रभुपाद ने कहा, यू नेवर नो हु कम्स हियर टू मीट मी। आप जान नहीं सकते कि यहां पर मुझसे मिलने के लिए कौन कौन कहां कहां से आते हैं। ब्रह्मानंद प्रभु आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने बताया भी नहीं श्रील प्रभुपाद को कि क्या हुआ। तो अब भगवान के ऑल्टर से, भगवान के प्लेट से वो भोग उठा लेना इस शास्त्र के विरुद्ध है। अब ये नहीं कि कल को श्रील प्रभुपाद ने कहा इसलिए जैसे ही भोग की प्लेट अंदर चढ़ती है तुरंत निकालते रहो उसमें से, नहीं। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार प्रभुपाद ने अपनी मैच्योरिटी के अनुसार वो डिसीजन लिया। तो इसलिए कई बार हमें, हमारे अंदर ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि संस्था के रूल किसी भक्त के ऊपर किस समय लागू करने चाहिए, और भक्त के ऊपर या किसी और के भी ऊपर। जैसे कई बार ये देखा जाता है कि जब किसी नियम के विषय में सख्ती से कहा जाता है कि ये नियम है कि दोपहर के 1:30 बजे सारे दरवाजे बंद हो जाने चाहिए और किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये शक्ति का नियम, ये संस्था का नियम है। परंतु भक्ति का नियम क्या है कि यदि कोई दर्शन के लिए आया है तो उसे दर्शन देना, ये एक भक्ति का नियम है। जैसे कि एक बार एक बहुत ही प्रख्यात विख्यात उद्योगपति राधा गोपीनाथ मंदिर में आए और वो मध्य प्रदेश कहीं से आए थे, बहुत दूर से आए थे राधा गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए, और उनके पास केवल 2-3 घंटे थे बंबई में, उसके बाद वो जाने वाले थे फिर से। और वो पहुंचे जब दोपहर का कर्टन बंद हो गया था, 1:15 बजे, 1 बजे बंद हो जाता है तो 1:15 बजे वो पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूं दर्शन लेने के लिए, क्या मुझे दर्शन केवल 1 मिनट के लिए मिल सकता है? तो उस समय के जो अध्यक्ष थे, टेंपल प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि हमारा नियम है कि भगवान के पट बंद हो गए हैं तो अब तो 4:30 बजे खुलेंगे, और मैं अध्यक्ष हूं तो मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपका नियम है तो मैं आपको उल्लंघन करने में नहीं लगाऊंगा उस नियम को, वो चले गए। अब यही बात राधानाथ महाराज तक पहुंची। तो राधानाथ महाराज ने कहा कि ये नियम, ये एक लोअर प्रिंसिपल है और हायर प्रिंसिपल है कि तुम पट खोलकर उसे दर्शन देते। और राधानाथ महाराज ने कहा कि यदि मैं होता तो मैं ऑल्टर खोलकर दर्शन दिलाता उनको, वो हायर प्रिंसिपल है। हालांकि वो जो अर्चना की नियम है उसके हो सकता है कि विरुद्ध हो, परंतु देश काल पात्र को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण के हृदय को थोड़ा बहुत जानते हुए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आराधना अर्चना हम क्यों कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो उन्हें प्रसन्नता इनमें इसमें ज्यादा मिलेगी कि कोई मेरा भक्त इतनी दूर से मेरा दर्शन करने के लिए आया और दर्शन नहीं मिल पाया उसे, तो उसमें भगवान ज्यादा दुखी होंगे। जैसे कि एक राधा गोपीनाथ मंदिर में एक बार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जब संडे का कार्यक्रम होता है तो जो छोटे राधा गोपीजन वल्लभ के अर्चक विग्रह हैं, क्या उन्हें दोपहर के समय विश्राम देना चाहिए, क्योंकि ऑल्टर बंद तो होता नहीं? तो वो 12:30 से लेकर रात को फिर उनको विश्राम दिया जाता है, नहीं तो नियम के अनुसार दोपहर में जो छोटे राधा गोपीजन वल्लभ हैं उनको विश्राम दिया जाता है, रेस्टिंग होता है दोपहर में, परंतु संडे के दिन संडे प्रोग्राम होता है दोपहर के समय तो ऑल्टर खुला रहता है। तो ये चर्चा हो रही थी कि क्या उन्हें पीछे विश्राम दे सकते हैं क्या, संडे फीस चल रहा है तब, तो ये चर्चा हो रही थी। तो एक बहुत डीटी वर्शिप में बहुत ज्यादा निपुण भक्त प्रभुपाद के शिष्य, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हां उनको विश्राम देना चाहिए, वो थक जाते होंगे। और फिर जनानिवास प्रभु से पूछा गया तो जनानिवास प्रभु ने कहा कि डीटी वर्शिप के नियम के अनुसार उन्हें विश्राम देना चाहिए, परंतु संडे के दिन इतने भक्त आए हैं और ये घर किसका है, उनका, राधा गोपीनाथ का घर है, तो वो होस्ट हैं और ये जितने भी संडे फीस्ट के लिए आए हैं ये गेस्ट हैं, तो कैसा लगेगा कि गेस्ट इतने आए और होस्ट जाकर सो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि लोअर प्रिंसिपल है कि हां ओडीटी वर्शिप के नियम का पालन कीजिए, परंतु हायर प्रिंसिपल ये है, और वो आपको किसी शास्त्र में संस्कृत कोटेशन नहीं मिलेगा, उसके लिए चाहिए मैच्योरिटी, और वो मैच्योरिटी आती है साक्षात्कार से, और साक्षात्कार आता है जब हम भक्ति उस शास्त्र के आधार पर ठीक से करते हैं। तो देखिए, शास्त्र के आधार पर जब हम दृढ़ता से भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार आता है, उस साक्षात्कार से मैच्योरिटी, और उस मैच्योरिटी से कई बार हम उसी शास्त्र का उल्लंघन भी कर सकते हैं भगवान को प्रसन्नता देने के लिए। इसलिए हमें हमारी भक्ति में मैच्योर बनना चाहिए। केवल ये नहीं कि मेरा 16 माला हो गया टाइम पर और चार नियम मैं पिछले 10 साल से पालन कर रहा हूं तो अपने आप मेरे अंदर वो कृष्ण प्रेम और कृष्ण भावना जागृत हो जाएगी, नहीं। ये सारे स्थितियां हैं जहां पर हमारा मैच्योरिटी चेक होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और वो आधारित है हमारे साक्षात्कार के। इसलिए जैसे कि यहां पर परीक्षित महाराज वो मूर्तिमान कली को दंडित कर रहे हैं और पुरस्कृत भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि कली को मैं मार दूं तो फिर जो हरिनाम की विधि है वो कलियुग निवासियों को नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए उन्होंने मूर्तिमान कली को उस समय तात्कालिक स्थिति को देखते हुए दंडित किया, परंतु आगे की देखते हुए मूर्तिमान कली को खत्म नहीं किया, क्योंकि यही मूर्तिमान कली के वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, और इसी मूर्तिमान कली के वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया जो किसी अवतार ने अब तक नहीं दिया था। तो हमें धन्यवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ और किसका करना चाहिए? मूर्तिमान कली का। क्या यह शास्त्र पर आधारित है? कोई श्लोक है ऐसा शास्त्र में? नहीं मिलेगा। इसे क्या कहेंगे? मैच्योरिटी। तो इसलिए हमारी साधना भक्ति में हम केवल ये जो अध्याय का शीर्षक है कली को दंड एवं पुरस्कार, इससे समझ में आ सकता है कि हम हमारी साधना भक्ति में किस स्तर पर हैं और किस स्तर तक हमें जाना है। तो हालांकि उदाहरण तो हम बहुत दे सकते हैं, परंतु केवल सिद्धांत हमें समझ लेना है और हमें अपनी अपनी व्यक्तिगत साधना भक्ति में उसे ट्रांसलेट कर उसका पालन करना है कि मेरी व्यक्तिगत साधना भक्ति में मैं मैच्योरिटी से ये सारे शास्त्र के सिद्धांत कैसे उसे उपयोग में लाऊं। इसलिए एक बार रिजोल्यूनेस राधानाथ महाराज वो बता रहे थे, एक हमारी मीटिंग हो रही थी, उसमें मीटिंग में बता रहे थे, वो कह रहे थे व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ यू शुड बी एज स्ट्रिक्ट एज यमराज, बट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ अदर्स you should be as liberal as Yudhishthir Maharaj। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को भी सहायता दी, परंतु उल्टा होता है, है ना? जब हम अपने स्वयं के ऊपर नियम लागू करने की बात आती है तो हम एकदम लिबरल, चलेगा, टूट गया ये नियम, टूट गया, अभी तक तो याद है हरे कृष्ण महामंत्र, अभी तक तिलक लगाना आता है मुझे, परंतु जैसे ही किसी और के ऊपर नियम लागू करने की बात आती है तो हम यमराज का दंड लेकर खड़े हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे अंदर स्वयं के अंदर कितनी ऐसी गलतियां हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव अपराध जो है वो केवल जब व्यक्ति वैष्णव बनता है तभी अपराध नहीं होता। वो ये नहीं कि अब वो दीक्षित है, अब उसको दीक्षा का नाम मिल गया है, अब वो इतने सालों से मंदिर में आ रहा है, वेशभूषा भक्त भक्त की पहन लिया है, वो अब अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इसकी तो दीक्षा भी नहीं हुई, ये तो अभी अभी आया है, इसको तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, कैसे भी व्यवहार कर सकता हूं। याद रखो ध्रुव महाराज और सुरुचि की कहानी। जब ध्रुव महाराज का अपराध हुआ था तब वो भक्त नहीं थे, परंतु जब वो आगे चलकर भक्त बने तो सुरुचि ने जो अपराध किया फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ा उसे। इसलिए हम यदि वैष्णव बनना चाहते हैं तो हमें बहुत सावधानी से, सुरक्ष्य धारा कहा गया है, जैसे कि हम लंदन में थे तो लंदन में ये उदाहरण एक भक्त दे रहे थे कि वैष्णव के साथ रहना ये एक ब्लेड की धार पर चलने के समान है। तो ये उदाहरण एक भक्त दे रहे थे, मैंने कहा कि इंडियन ब्लेड के ऊपर चलने के समान है, क्योंकि वहां के जो ब्लेड हैं वो बहुत सेफ रहते हैं, वो ट्विन ब्लेड, उसमें ज्यादा कटता भी नहीं। लेकिन जो हमारा वो इंडियन ब्लेड होता है ना, वो सिंगल टोपाज, वो ब्लेड को हाथ में रखना या वो ब्लेड के ऊपर कोई चलने के यदि कहे तो वो बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। और हम तो इंडिया में हैं, तो इंडिया में और इंडिया में भक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए इंडियन ब्लेड का एग्जाम्पल होगा। तो इतना सावधान होना चाहिए हमें भक्ति में कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और हां, हम शास्त्र को कोट कर रहे होंगे जैसे अर्जुन शास्त्र को कोट कर रहे, परंतु क्या हम उसे सही समय पर सही तरीके से। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन करेक्ट समवन बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू करेक्ट, वेदर यू आर करेक्टिंग इन द राइट वे, वेदर यू आर करेक्टिंग एट द राइट टाइम, वेदर यू आर करेक्टिंग द राइट पर्सन, वेदर यू आर करेक्टिंग विद द राइट कॉन्शियसनेस। अगर इसमें से एक भी सही नहीं हो रहा तो हमारे अंदर कोई अधिकार नहीं किसी को ठीक करने का। यदि हमारी चेतना ठीक नहीं है, यदि हम सही तरीके से सही समय पर और सही व्यक्ति को नहीं कर रहे तो फिर वो हमारे ऊपर अपराध के रूप में आएगा। इसलिए ध्यान में रखिए संस्था के नियम और हमारे स्वयं के साधना के नियम, उसमें अदला बदली नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों के पालन करने में मैच्योरिटी होनी चाहिए। जैसे यहां पर परीक्षित महाराज, कि ठीक प्रकार से दंडित भी कर रहे हैं मूर्तिमान कली को और पुरस्कृत भी कर रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, आपको अब एकदम लोकल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देते हैं कि संडे फीस्ट का कार्यक्रम चल रहा है और हमको बाहर कूपन काउंटर पर बिठाया है। नियम क्या है? संस्था का नियम क्या है? संस्था का नियम है कि भक्तों को क्या 8 बजे से पहले आना है तब उन्हें फ्री कूपन मिलेगा। यदि वो 8 बजे के बाद आएंगे तो उन्हें पैसे भरने होंगे। ये संस्था का नियम है। अब हमें देखना है कि ये नियम हम सही व्यक्ति के ऊपर लागू कर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि नियम किस लिए है, किस लिए ये नियम, ताकि कोई भी आलतू फालतू आदमी आकर दुरुपयोग या डिसएडवांटेज न ले जो यहां पर सुविधा प्रदान की जा रही है, उसके लिए है। अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना सब कुछ तन मन धन भगवान की भक्ति में लगाने के लिए ईमानदारी से चेष्टा कर रहा है और किसी कारणवश वो देरी से आ रहा है, तो वही सिद्धांत अब गलत आदमी के ऊपर लागू हो रहा है, है कि नहीं? वही सिद्धांत सही है, वो नियम सही है, परंतु जिस व्यक्ति के ऊपर लागू हो रहा है वो गलत है। चेतना भी सही होगी, जो व्यक्ति उस नियम को लागू कर रहा है उसकी चेतना सही है, समय सही है, जगह सही है, परंतु वो जो आदमी जिसके ऊपर वो नियम लागू हो रहा है वो गलत है। क्योंकि वो नियम किन व्यक्तियों के लिए है? उन व्यक्तियों के लिए जो उसका गलत उपयोग लेते हैं। तो ये एक उदाहरण जिससे हमें समझ में आ सकता है। अब यही स्थिति को मैं एक दूसरे पहलू से देखते हैं कि कोई व्यक्ति कूपन के काउंटर पर है और कोई व्यक्ति सही समय पर आया है और आपने कूपन उसे दिया, सब कुछ ठीक हुआ, परंतु आपकी चेतना क्या थी? आपकी मतलब किसी की चेतना ये थी कि ये व्यक्ति मुझे मेरे भौतिक कार्य में बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए मैं खुद अपने हाथों से इसे कूपन देता हूं। वो चेतना गलत है, सब कुछ बाकी ठीक है, व्यक्ति ठीक है, सही समय पर सही जगह पर, परंतु चेतना गलत है कि उसके द्वारा कोई अपना भौतिक एजेंडा पूरा करना चाहता है, वो चेतना गलत हो। तो इसलिए यहां पर हमें अपना मैच्योरिटी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति जिसने 10 साल से वो भक्ति कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति यदि 10 साल से 15 साल से भक्ति कर रहा है और यदि हो सकता है कि पिछले महीने ही आए भक्ति करना शुरू किए और किसी कारण के वजह से, तो उसका इंटेंशन गलत नहीं है। इसलिए सारे जो संस्था के नियम वो किस लिए होते हैं, इंटेंशन जिसका गलत होता है उसे रोकने के लिए। एक होता है जिसका इंटेंशन गलत होता है, एक होता है जिसके शारीरिक कार्य कर्म गलत होते हैं, है कि नहीं। तो कई ऐसे होंगे जिनके शारीरिक बाहरी कार्य ठीक होंगे परंतु इंटेंशन गलत होगा। आपको मुझे मार्बल डोनेट करना है, आपके मंदिर में मार्बल नहीं दिख रहा तो मुझे थोड़ा मार्बल डोनेट करना, तो उसके कर्म वो बता रहा है अपने शब्दों से और वो लेके भी जाएगा आपको, लेकिन उसका इंटेंशन पूरा गलत। तो संस्था को चलाने के लिए हमारे अंदर इस प्रकार की मैच्योरिटी होनी चाहिए कि लोगों के कर्मों को और उनके इंटेंशन को साथ साथ भांप ले हम। कई बार उनके कर्मों को देखते हुए उनके इंटेंशन नहीं दिखते, और ये नहीं कि इंटेंशन प्योर है तो वो कुछ भी करें, उन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, वी रिक्वायर टू थिंग्स, इंटेलिजेंस एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। और प्रभुपाद ने कहा, हु इज द बेस्ट मैनेजर? प्रभुपाद ने कहा, द बेस्ट मैनेजर इज ही हु मैनेजेस फॉर ऑल द डिवोटीज देयर प्रॉपर साधना। मतलब कि वो इस प्रकार का मैनेजमेंट कर रहा है वो व्यक्ति, कि जिस मैनेजमेंट के वजह से भक्त अपना हरिनाम श्रवण कीर्तन वो ठीक से कर सके। तो यदि बाहरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है परंतु यदि श्रवण कीर्तन वो ठीक से नहीं हो पा रहा भक्तों का, तो बाकी सब मैनेजमेंट अच्छा रहेगा परंतु जो सारे मैनेजमेंट का उद्देश्य है वो विफल हो गया। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, प्रीचिंग, अगर प्रचार में कोई व्यक्ति आपसे और भगवान से दूर जा रहा है तो प्रचार का विपरीत हो रहा है। इफ समबडी गोज अवे फ्रॉम कृष्णा, दैट्स कॉल्ड एंटी प्रीचिंग। तो इससे अच्छा बोलो मत। यदि आपके बोलने के वजह से कोई भगवान से और दूर जा रहा है तो चुप रहो। इंग्लिश में एक कहावत है, यू स्टैंड अप टू बी सीन, यू स्पीक अप टू बी हर्ड, एंड यू शट अप टू बी अप्रिशिएटेड। तो कब खड़ा होना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कब चुप होना चाहिए, ये जान लेना चाहिए। यही मैंने जो अभी उदाहरण दिया कूपन का, ये संस्था का नियम है, परंतु वो व्यक्ति अपनी साधना करने के लिए मंदिर में आ रहा है तो उसके साधना के नियम को पूरा करने के लिए वो आ रहा है। और हमारी साधना क्या है? हमारी साधना में एक है प्रचार। तो हमारी साधना में प्रचार है, और यदि वो प्रचार हम इस प्रकार से लागू नहीं कर पा रहे कि जो आ रहा है एक वाक्य के वजह से, हो सकता है कि वो कभी वो साधना भक्ति छोड़ दे, कभी मंदिर में नहीं आए, तो फिर हमारे संस्था के नियम के वजह से हम अपनी साधना में बाधा डाले हैं और उस व्यक्ति की साधना में बाधा डाले। और ऐसे बहुत से उदाहरण। ये नहीं कि हमें ऐसे उदाहरणों के लिए रुकना है और तब जाकर हम सुधरेंगे। ऐसी ऐसे उदाहरण और भागवतम क्लास में ना आए, इससे पहले हमें सुधार ला लेना चाहिए। तो इस एक उदाहरण मैंने दिया, ये एक घटना अगर ऐसी होगी, ऐसी घटना, तो इसे फिर हम बाकी सारे जो संस्था के नियम है और हमारे साधना के नियम है उसमें हम लागू कर सकते हैं। ध्यान में हम करेंगे तो ऐसे बहुत से नियम हैं, जैसे कि वही उदाहरण मैंने दिया कि वो बड़े उद्योगपति आए थे तो संस्था के नियम के अनुसार पट नहीं खुलने चाहिए, परंतु उस व्यक्ति की साधना भक्ति शुरू करने के लिए वो संस्था के नियम का उल्लंघन भी किया जा सकता है। और कोई प्रश्न? ऐसी अवस्था में जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का पालन तो हमें करना चाहिए। और यदि हम देखें कि वो नियम के पालन करने के वजह से संस्था को और साधना में हानि पहुंच रही है तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए अथॉरिटी को मैच्योरिटी से। उसमें भी ये चार चीजें आएंगी, वेदर इट इज द राइट टाइम टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटी, वेदर आई एम डूइंग इन द राइट वे फॉर द राइट पर्सन इन राइट कॉन्शियसनेस। और यदि हम अपने अथॉरिटी या जो अथॉरिटी है उनके अथॉरिटी या उनके अथॉरिटी को हम इस तरीके से रिपोर्ट करेंगे अच्छे कॉन्शियसनेस में, तो हो सकता है कि वो समस्या को उस तरीके से सुलझाया जाए। परंतु यदि हम कानून को खुद के हाथ में ले लेंगे कि नहीं मैं ही उसको ठीक करता हूं, तो फिर और हम अपने आप को उस उलझन में डाल रहे हैं, फंसा रहे हैं। हालांकि हर एक स्थिति सब्जेक्टिव है, बट मैंने ऑब्जेक्टिव सिद्धांत बताया। हर एक स्थिति में फिर हमें अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर उसे उस समय टैकल करना होगा। जैसे मान लो कि आपको सेवा दी गई है कि भगवद गीता कोर्स का रजिस्ट्रेशन करना है, तो भगवद गीता कोर्स का रजिस्ट्रेशन करना है और आप तैयार हुए हैं भगवद गीता कोर्स के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और आपके पासेज अभी प्रिंट होकर आए नहीं, और उसी समय आपके अथॉरिटी ने आपको कहा सब्जी काटने किचन में आओ, तो उस समय स्थिति को यहां पर देखिए। भगवद गीता कोर्स का रजिस्ट्रेशन भी साधना भक्ति है और सब्जी काटना भी साधना भक्ति, तो उसमें अब किसको प्रायोरिटी कब देना है इसके लिए मैच्योरिटी होना चाहिए, और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है अब यदि आप अपनी अथॉरिटी को बताओगे नहीं कि आपका प्रायोरिटी अभी क्या है, और आप यदि एक्सपेक्ट करोगे कि उसे जान लेना चाहिए कि मुझे गीता कोर्स का रजिस्ट्रेशन करना है, सब्जी काटने के लिए कैसे बुला रहे हैं, अरे भाई उन्हें क्या पता कि तुम्हारा अभी पासेस प्रिंट नहीं हुआ, तुम्हें वो सब लाना होगा पहले। तो सबसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन से बहुत सी समस्याएं सुलझ जाती है। एक और तरीका कि यदि पासेस प्रिंट नहीं हुए तो क्या रजिस्ट्रेशन करोगे, और यदि प्रिंटर खुल रहा है 11 बजे तो इससे अच्छा सब्जी काटो, है ना। तो इसमें दोनों अथॉरिटी को आप प्रसन्न कर सकते हो, सब्जी भी काट ले और फिर प्रिंटर जब खुला उसमें से पास लाकर फिर रजिस्ट्रेशन भी किया, या फिर किसी को भेजो जो सब्जी नहीं काट सकता पासेज लाने के लिए, जो पासेज ला सकता है लेकिन सब्जी नहीं काट सकता, या फिर जो सब्जी काट सकता है पासेज नहीं ला सकता उसे सब्जी काटने पे लगाओ। और यदि आप दोनों कर सकते हो तो फिर भगवान श्री कृष्ण ज्यादा आपसे प्रसन्न होंगे। मैच्योरिटी, और कोई मैच्योर प्रश्न किसी के? हाँ नहीं, संतुष्टि नहीं हुई, कुछ और पूछना है? उसके लिए हरिनाम, कॉन्शियसनेस सुधारने के लिए हरिनाम, हरिनाम सुधारने के लिए हमारी सेवा, अन्य हमारा श्रवण। श्रवण यदि अच्छा होगा तो हरिनाम अच्छा होगा, सेवा यदि अच्छी होगी तो चेतना अच्छी होगी। हरिनाम लेते समय कम से कम जगे तो रहेंगे, और यदि वैष्णव अपराध नहीं करेंगे तो वो हरिनाम में हमारी चेतना बनी रहेगी, और उस शुद्ध हरिनाम से धीरे धीरे हमारी चेतना सुधरेगी। नहीं, वैष्णव अपराध में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, उसमें आप कुछ पॉजिटिव निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वैष्णव अपराध के बारे में शास्त्रों में ये कुछ कहा नहीं गया कि इस स्थिति में या इस जगह पर, इस स्थान में, इस टाइम पर वैष्णव अपराध अलाउड है, नहीं। तो ये बात भूल जाइए कि वैष्णव अपराध में आप कुछ पॉजिटिव देख पाओगे, वैष्णव अपराध में नेगेटिव ही है। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि जब हम वैष्णव के साथ डील करते हैं तो चाहे हमारे संस्था के नियम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि संस्था के नियम भौतिक हैं, परंतु जो साधना के नियम है वो शास्त्र पर आधारित है। तो उसमें मैच्योरिटी होना चाहिए कि किसको प्रायोरिटी देकर किसको पकड़ कर रखना है हमें। तो इसलिए पॉजिटिवली हम उसी में देख सकते हैं कि किसको प्रायोरिटी दे। संस्था के नियम को यदि कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े और यदि आप वैष्णव अपराध से बच पा रहे हो तो सबसे पहले वैष्णव अपराध से बचो। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति के ऊपर प्रहार करने आया है तो सबसे पहले वो अपने आप को उस प्रहार से बचाए। यदि वो अपने आप को उस प्रहार से बचा लेगा तब जाके वो और कुछ कर पाएगा। तो यदि हम अपने आप को वैष्णव अपराध से बचाएंगे तब जाकर संस्था में रहेंगे, तब जाकर फिर संस्था के नियम पालन कर पाएंगे। यदि वैष्णव अपराध में ही हम फंसे रहें तो फिर संस्था में ही नहीं रहेंगे तो नियम क्या, फिर छोड़ दीजिए। तो वो मैच्योरिटी होना चाहिए कि हम सबसे पहले तो ये बात को बाहर निकाल दीजिए कि उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं। नहीं, पाप के अंदर भी देख सकते हैं परंतु वैष्णव अपराध में नहीं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। बाद में डिस्कस करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।